हैश कहानी एहसास तुम्हारे हैश प्यार का। खिड़की के पर्दों के अगल बगल से घुसपैठ करती सूरज की किरणों के कारण नेहा की नींद उचटने लगी थी। वह थोड़ी देर और सोना चाहती थी, पर एक बार नींद उचट जाए तो फिर सोना मुश्किल हो जाता है। नेहा ने चुपचाप लेटे लेटे घड़ी की तरफ नजरें दौड़ाई तो 10 बज चुके थे। उस दिन रविवार था और छुट्टी की सुबह वैसे भी आलस भरी होती है। वह उठकर एक कप कॉफी बना लाई। ये कॉफी ही तो उसके रसीन जीवन में बचा एकमात्र रस था। वह कॉफी लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। रूम से बाहर निकलते ही 14वीं मंजिल के फ्लैट के सामने फैली कॉलोनी की सड़कों पर भागती गाड़ियां और लोग नजर आने लगे। बाहर के शोर शराबे तो उस तक नहीं पहुंच पाते थे, फिर भी उनकी गति उसे जीवित होने का एहसास जरूर करा देती थी। तभी कॉलबेल की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। कमला होगी, वह छुट्टी के दिन देर से आती थी। उसने दरवाजा खोला तो कमला अंदर आकर खामोशी से अपने काम में जुट गई। हल्के फुल्के बर्तनों का शोर और वॉशिंग मशीन की खटपट कभी कभी आसपास फैली खामोशी को तोड़ रही थी। कमला ने अपना काम समाप्त कर दोपहर का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, फिर दरवाजा बंद करने के लिए उसे बोलकर चली गई। कमला के जाने के बाद वह सीधे बाथरूम में घुसी। नहाने के बाद फ्रेश होकर बाहर निकली तो मन काफी हल्का हो गया था। नाश्ता करके वह फिर बिस्तर पर आ लेटी, पास पड़ी पत्रिका को उलटती पलटती रही, फिर लैपटॉप निकालकर ऑफिस के कुछ अधूरे काम पूरे करके खाना खाया और एक बार फिर बालकनी में आ बैठी। समय से आकर कमला रात का खाना बनाकर चली गई। माहौल में फिर वही एकाकीपन और खामोशी पसर गई। तभी उस खामोशी को चीरती मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। उसकी मम्मी का फोन था। वही पुराना राग की जल्दी शादी के बारे में सोचो, फिर उन लड़कों की जानकारियां देने लगी जो उनकी गुड लिस्ट में थे। नेहा ने हाहू कर अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल रखते ही उसे याद आया कि कल ऑफिस जाना है। जल्दी नहीं सोई तो समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाएगी। मन में उपजे अवसाद को झटक वह सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन ऑफिस में घुसते ही गुड मॉर्निंग की आवाज ने उसे चौंका दिया। नजरें घुमाए तो गौतम था। पिछले हफ्ते ही कानपुर से ट्रांसफर होकर आया था। जब से इस ऑफिस को ज्वाइन किया था तब से किसी न किसी बात की जानकारी हासिल करने के बहाने उसके पास चला आता। शायद नेहा का सबसे कटे कटे रहकर अपने काम में मशगूल रहना उसे खटकता था, पर चाहकर भी नेहा उससे खुलकर बातें नहीं कर पाती थी। हालांकि वह चाहती थी कि वह भी बाहर के शोर शराबे का हिस्सा बने, जोर जोर से ठहाके लगाए और सबसे तर्क वितर्क करे और अपने अंदर जमा अकुलाहट और छटपटाहट को बाहर आने दे, पर स्वभाव के अनुरूप बात होठों तक आकर रुक जाती थी। उसे लगता कि उसके मन की संवेदनशीलता, उसके दुख दर्द और प्यार की भावना को मन की परतों में कहीं गहरे चुन दिया गया था, जिसे वह महसूस तो कर पाती थी पर प्रकट नहीं कर पाती थी। उस दिन घर लौटी तो उसे याद आया कि आज उसका बर्थडे था। देर तक इंतजार करती रही पर मम्मी पापा में से किसी का फोन नहीं आया। दोनों कहीं किसी पार्टी में व्यस्त होंगे, उसकी आंखें भर आईं। तभी कॉलबेल बजी। दरवाजा खोला तो अचंभित रह गई। सामने गौतम खड़ा था, हाथों में केक थामे हुए। इसे कैसे पता चला कि आज उसका बर्थडे है, फिर भी दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने के लिए जगह बना दी। वह इत्मीनान से अंदर आकर केक को टेबल पर रखते हुए बोला, बैठने के लिए नहीं कहोगी? नेहा का दिल चाहा कि उससे कहे कि अब तक सब कुछ क्या तुम मेरी इजाजत से कर रहे थे, जो अब तुम्हें इजाजत की जरूरत पड़ गई, पर मुस्कुराकर उसे बैठने के लिए कहना ही पड़ा। फिर नेहा ने केक काटने की औपचारिकता निभाए और दोनों ने मिलकर केक खाया। अब तक दोनों के बीच की झिझक भी काफी कम हो गई थी। देर तक वे इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद गौतम चला गया, पर नेहा की सोच बहुत देर तक गौतम के आसपास ही घूमती रही। उसे लगा कि कुछ तो दम है गौतम में, क्यों उसके मन में गौतम के लिए सम्मोहन बढ़ने लगा था? बरसों से दिल के अंदर छुपे निश्चल प्यार की चाह की संभावना शायद उसे गौतम में दिखने लगी थी। वह बिस्तर पर आ लेटी, पर आज उसका मन कहीं ठौर ही नहीं पा रहा था। मन के झरोखे से दादी माँ का प्यार भरा चेहरा उसके दिलो दिमाग पर दस्तक देने लगा था। कितना सुकून मिलता था उसे दादी माँ की गोद में। जब भी दादी माँ गांव से आती, मम्मी के परायों जैसे व्यवहार से दुखी भले ही उनके मुख पर अनाधिकार का बोझ नजर आता, पर उनका शालीन व्यवहार और शीतल ममत्व भरी दृष्टि उनके प्रति श्रद्धा और आत्मीयता की भावना जगाता था। उन्हें भी अपने बेटे और पोती से बेहद प्यार था, फिर भी उनकी खुशी और घर की सुख शांति के लिए वे गाँव के एक मामूली से मकान में रहती थी। उसके पापा एक प्रशासनिक अधिकारी थे और माँ एक कॉलेज में पढ़ाती थी। नेहा उन दोनों की इकलौती संतान थी। उसके पापा एक अतिसाधारण परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। बहुत कठिनाइयों का सामना करके उनकी मां ने उन्हें पढ़ाया था। नेहा की मम्मी ने उच्च पद पर देखकर उनसे शादी जरूर की थी, पर पति के विपन्न और गंवई परिवार को कभी अपना नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसके पापा चाहकर भी अपनी माँ तक को भी अपने साथ नहीं रख पाते थे। उसने जब से होश संभाला यही देखा था कि मम्मी हमेशा पापा से असंतुष्ट रहती। एक तो पुरुष वर्चस्व को स्वीकारना उनके स्वभाव में नहीं था, दूसरे उन्हें लगता कि पापा के अतिसाधारण परिवार के साथ उनके उच्च वर्गीय परिवार का कोई मेल ही नहीं। नेहा को संभालने के लिए उन्होंने एक आया को रखा था, पर उसकी माँ दादी माँ को अपने घर में टिकने नहीं देती थी, जबकि नेहा दादी माँ के रहने से अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती और ज्यादा खुश रहती। पर जब भी दादी माँ आती एक हफ्ते में ही उसकी मम्मी किसी न किसी बहाने से उन्हें गाँव भेज देती। वह अंदर से तिलमिला उठती, चाहती तो थी कि मम्मी के इस फैसले के विरुद्ध आवाज उठाए, पर उसके मन का विरोध मन में ही घुटकर रह जाता। एक डर, तनाव और असुरक्षा की भावना हमेशा उसके दिलो दिमाग में बनी रहती। जड़ता से भरी घुटन उसके अंदर एक अनजानी सी छटपटाहट भर रही थी। हालात से मरमाहत और टूटी हुई नेहा ने एक खामोशी का आवरण ओढ़ लिया था। धीरे धीरे वही खामोशी उसके वजूद का हिस्सा बन गया। अचानक उसे लगा कि उसकी आंखें भीगने लगी हैं। वह अपनी हथेलियों से अपनी आंखें सुखाती हुई सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन ऑफिस गई तो सुबह से ही बारिश हो रही थी। नेहा को ऑफिस से लौटने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। गौतम ने लिफ्ट देने की पेशकश की तो वह झट से मान गई। पहले गौतम का घर पड़ता था, फिर नेहा का। रास्ते में गौतम ने अपने घर के सामने कार रोकते हुए उसे घर में चलकर एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया तो वह मना न कर सकी। गौतम के पापा नहीं थे, घर में उसकी माँ गायत्री देवी और एक छोटी बहन गौरी थी। दोनों ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। घर का वातावरण तो साधारण ही था, पर उसकी सीधी सादी और धीर गंभीर माँ के चेहरे पर झलकने वाले प्यार और ममता में ऐसा आकर्षण था कि नेहा को वह अत्यंत आत्मीय लगी। चाय पीने के बाद वह चलने लगी तो बड़े प्यार से गायत्री जी ने गौतम को घर तक छोड़ आने की हिदायत देकर भेजा। उनका निश्चल प्यार और अपनापन देखकर उसका मन भीग उठा। न जाने क्यों दादी माँ की यादें ताजा होने लगी। तभी तेज बारिश के कारण गाड़ी ने एक जोर का हिचकोला खाया और वह गौतम की बाहों में जा गिरी। गौतम उसे मुस्कान भरी नजरों से देखते हुए बोला, मैडम सीट बेल्ट लगाओ, बारिश का फायदा मत उठाओ, कहीं किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की नजर पड़ गई कि आपने बेल्ट नहीं लगाई है तो हम दोनों की रात हवालात में गुजरेगी। उसकी बातों से नेहा तो जैसे पानी पानी हो गई। नहीं, वो गाड़ी के हिचकोले, उसकी जबान न जाने क्यों लड़खड़ा गई। गौतम ने प्यार भरी मुस्कान से नेहा को देखा तो वह और भी नर्वस हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। गौतम की सतर्क नजरें अब सड़क पर जम सी गई थी और नेहा की चोर नजरें गौतम के चेहरे पर। एक अनजानी सी अनुभूति उसे मोहित करने लगी थी। तभी गौतम द्वारा अपनी चोरी पकड़े जाने का ख्याल मन में आते ही उसके गाल सुर्ख हो गए और उसने नजरें घुमा ली, पर दिल चाह रहा था कि वे दोनों उम्र भर ऐसे ही चलते रहें, लेकिन मंजिल आ ही गई। उसके फ्लैट के कैंपस में काफी पानी भर गया था, कहीं ऐसा ना हो कि नेहा पानी में चलते हुए गिर जाए। ये सोचकर गौतम बेझिझक उसकी बांह पकड़कर उसे लिफ्ट तक छोड़ आया। अपने फ्लैट में आकर कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। गौतम की छुअन में जाने ऐसा क्या था कि वह देर तक प्यार से अपनी बांह सहलाती रही, जैसे सारे जहां की खुशियां उसके दामन में भर गई हो। तभी अचानक उसकी सारी सोच पर जैसे लगाम लग गया, जब उसे याद आया कि उसकी मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने अब तक उसके दिमाग में भी यही डाला था कि उसके पापा की अच्छी नौकरी के कारण वह एक गलत परिवार में फंस गई, जिसका समाज में कोई स्टेटस ही नहीं था। वह गौतम के लिए भी वैसा ही सोचेंगी, पर नेहा क्या करे। उसका मन खुद ब खुद एक अनजाने अनकहे प्यार की डोर में बंधता चला जा रहा था। एक दिन ऑफिस स्टाफ नमन की शादी में ऑफिस के सभी लोग आमंत्रित थे। नेहा वहां पहुंची तो कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर गौतम पर पड़ी। वह झट से उसके पास पहुंचकर बोली, बहुत देर कर दी आने में, क्यों मुझे मिस कर रही थी, वैसे आज साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। गौतम के शरारत भरे जवाब ने उसे शर्मसार कर दिया। वह इधर उधर देखती हुई अपने मन की बात छुपाने के लिए बोली, ऑफिस के और लोग देख नहीं रहे हैं। तभी आसपास जमा भीड़ में से किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वह सीधे गौतम की बाहों में जा गिरी। दोनों की नजरें मिली और उसी पल जैसे दोनों के दिल जुड़ गए। वह चाहकर भी उसके आलिंगन से अपने को मुक्त नहीं कर पा रही थी। दिल चाह रहा था कि समय रुक जाए और वह यूं ही उसकी बाहों में पड़ी रहे। न अपना होश था, न आसपास की भीड़ का। जीवन में पहली बार वो किसी के लिए ऐसा महसूस कर रही थी। पर लोगों की बेधती नजरें और व्यंग्यात्मक मुस्कानों ने जल्द ही उसे होश में ला दिया और वह खुद को संभालती हुई गौतम से अलग जा खड़ी हुई। देखते देखते ऑफिस के और लोग भी आ गए। फिर तो हंसी मजाक, खाने और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अंत में जब सब घर चलने को तैयार हो गए तो वह गौतम से बोली कि उसे घर तक छोड़ दे। तभी नैना को जैसे कुछ याद आ गया। वह अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर गौतम को देते हुए बोली, गौतम तुम्हारी शादी के लिए आंटी ने जिस लड़की की फोटो और कुंडली मंगवाई थी इस लिफाफे में है, उन्हें दे देना और तुम भी देख लेना। एक बात और, इन लोगों को जल्दी जवाब भी चाहिए तो एक दो दिन में अपना जवाब मुझे बता देना। नैना तो चली गई पर उसे गहरा झटका दे गई। अब तक जो वह सोच समझ और महसूस कर रही थी, क्या वह सब झूठ था? क्या गौतम उसके विषय में गंभीर नहीं है? तभी गौतम ने उसे चलने के लिए कहा तो वह यंत्रचालित सी उसके बगल में जा बैठी। रास्ते भर दोनों चुप ही रहे। घर आकर कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटी तो उसके मन में बवंडर सा मचा था। कभी मम्मी के आग्नेय नेत्रों का आतंक तो कभी गौतम का आकर्षण, उसका प्यार भरा चेहरा। फैसला तो उसे लेना ही पड़ेगा। उसकी मम्मी ने अपना जीवन हमेशा अपने हिसाब से जिया, न पापा की ख्वाहिशों का ध्यान रखा न ही दादी के सम्मान का। उन्होंने हमेशा उसे यही समझाया कि अपनी खुशी ही आदमी के लिए सर्वोपरि होती है। रिश्तों में त्याग की बातें आडंबर के अलावा कुछ नहीं है, फिर मम्मी की खुशी के लिए वह क्यों त्याग करे? मन के आक्रोश से अब कालिमा छंटने लगी थी। ऐसा ना हो कि यही सब सोचने समझने में गौतम को ही खो दे। कभी कभी किसी के जीवन में कोई संबंध अचानक इतना आत्मीय हो जाता है कि उसे खो देने का भय बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। उसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। कोई बात नहीं, अगर गौतम उसे प्यार करता है तो समझेगा भी। उसने गौतम का नंबर मिलाया। उधर से गौतम की नींद से भरी आवाज सुनाई दी, हेलो मैडम, इतनी रात को मैं कैसे याद आ गया? गौतम आई लव यू, वह जल्दी से एक सांस में ही बोल गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक जोरदार ठहाका गूंज उठा और नेहा पूरी तरह नर्वस हो पसीने पसीने हो गई। गौतम जैसे बिना देखे ही उसकी स्थिति समझ गया। घबराओ मत, मैं भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो। अब सो जाओ, कल मिलते हैं। जरूर, नेहा ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। जिंदगी में शायद पहली बार उसने सही समय पर अपने लिए सही स्टैंड लिया था।